अच्छा, तो आज का टॉपिक है योग का महत्व क्या है। हमारे पुरुषार्थ जीवन में योग का कितना बड़ा महत्व है। वैसे तो योग है पुरुषार्थ, योग पुरुषार्थ है और उसका रिजल्ट है धारणाएं, दैवी गुण, दैवी शक्तियां, संस्कार परिवर्तन, ये सब है धारणाएं। तो हमें पुरुषार्थ करना है। जब पुरुषार्थ योग लगाने का करेंगे तो धारणाएं ऑटोमेटिकली होती जाएगी। अगर मेरे संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे, अगर मेरे अंदर दैवी गुण नहीं आ रहे, मेरे अंदर शक्तियां नहीं आ रहे, ईश्वरीय नियम और मर्यादा की पालना मेरे से नहीं हो रही, इसका मतलब मेरा योग नहीं है। इसीलिए हमें पुरुषार्थ करना है योग लगाने का, अर्थात बुद्धि बार बार बाबा के तरफ कन्वर्ट करने का। जितना हमारी बुद्धि बाबा के तरफ जाएगी उतना हमारा देह का बान मिटता जाएगा। इसीलिए हमें पुरुषार्थ करना है। ये नहीं सोचना कि भविष्य में मेरा पद क्या मिलेगा, सत्युग कब आएगा, ये दुनिया कब खत्म होगी, ये बदलेगा या नहीं बदलेगा। जिसको बाबा कहते हैं ना कारण, लेकिन कारण के बजाय हमें पुरुषार्थ करना है। ये जो दैवी गुण है, शक्ति है या धारणाएं है, ये तो योग की परछाई है। जब हमारा योग लगता है तो ये तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ आ ही जाएंगे। इसीलिए हमें परछाई का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है योग लगाने का। इसलिए जीवन में या पुरुषार्थ में योग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमारा योग नहीं लगता तो हमारे जीवन में समस्याएं, कारण, संस्कार आते रहेंगे। जितना बाबा ज्ञान सुनाता है, इस ज्ञान को धारणा में लाने के लिए सब पॉइंट हमें बुद्धि में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन योग करेंगे तो सभी मुरली के पॉइंट्स हमारे धारणा में आएंगे। जैसे बाबा ने अभी कहा, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। लेकिन होलीएस्ट भी कब बनेंगे? हम यही सोचते रहेंगे मुझे होलीएस्ट बनना है, होलीएस्ट बनना है। कोई इस होलीएस्ट के पॉइंट को रिपीट करने से होलीएस्ट नहीं बनेंगे, होलीएस्ट बनेंगे योग लगाने से। जितना बुद्धि हमारी बाबा के साथ लगी रहेगी, योग लगाएंगे, उसी योग का रिजल्ट है होलीएस्ट। योग का रिजल्ट है हाईएस्ट, योग का रिजल्ट है रिचेस्ट। जो गुण है, शक्ति है, ये पुरुषार्थ का फल है। जब हम योग लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में गुण और शक्तियां नजर आएगी, धारणाएं नजर आएगी। जिसको बाबा कहते हैं संस्कार, तो इसीलिए हमें, जैसे बाबा पहले साकार मुरलियों में एक शब्द यूज करते थे सर्विस सर्विस सर्विस, लेकिन ये बहुत साल पहले की वाणी है सर्विस सर्विस सर्विस, लेकिन अभी हमें समय अनुसार क्या करना है, योग योग और योग, बस बाबा की याद, क्योंकि याद में ही सेवा भी समाई हुई है, याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। इसीलिए अभी समय अनुसार हमें योग के सब्जेक्ट के ऊपर क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल करके हमारे सामने बहुत सारी बातें आती रहेंगी, समस्या आती रहेंगी, परिस्थिति आती रहेंगी, लेकिन अगर अभी योग के लिए टाइम नहीं निकाला तो आगे चल करके हम अपने अंदर बल नहीं भर पाएंगे, हम स्वयं भी उड़ने जितनी पावर भी हमें नहीं मिलेगी। इसलिए अभी से हमें क्या करना है, योग के लिए टाइम निकाल करके योग जरूर करना है। योग के लिए आपको कोई कहेगा नहीं कि योग करो, ये खुद हमारा खुद का इंटरेस्ट चाहिए, योग के सब्जेक्ट में हमारा खुद इंटरेस्ट हो। अब जिसका योग के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको ऑटोमेटिकली सेवा में भी इंटरेस्ट आएगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर धारणा का भी इंटरेस्ट आएगा, सभी बातें उसके लिए इजीली लगेगी। इसीलिए हमें क्या करना है, योग के सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी तरह ध्यान रखना है, क्योंकि योग के द्वारा ही हम अपने कर्मेंद्र को शीतल बना सकते हैं, कर्मेंद्र का राजा बन सकते हैं। योग के द्वारा हम वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, जिसको बाबा आजकल कहते ना एक साथ तीन सेवा, तो इसलिए हमें क्या करना है, योग युक्त रहना है। योग युक्त रहने से या बुद्धि हमारी बाबा के साथ रहने से हमारा मनोबल बढ़ता है, मनोबल शक्तिशाली रहता है, और योग में रहने से ही हम देखते भी न देखने की हमारी अवस्था रहेगी, जिसको बाबा ने संडे की दिन कल की मुरली में कहा साक्षी अवस्था, साक्षीपन। और जितना आप साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मुहूर्त बन सकते हैं, माने इस संसार में रहते हुए भी इस संसार की बातों को देखते हुए भी जिसका योग है बाबा के साथ वो इन बातों को आश्चर्यजनक बातें वंडरफुल बातें, इन बातों के विचार नहीं चलेंगे आपको, ये क्यों हुआ, ये ऐसा कैसा हुआ। जिसका बुद्धि और मन योग में बिजी है उसके लिए वंडरफुल लगेगा नहीं, वो संकल्प ही नहीं चलाएगा कि क्यों हुआ कैसे हुआ, क्योंकि उसका बुद्धि का योग बाबा के साथ है। इसको कहते एकाग्रता, साक्षी अवस्था अर्थात एकाग्रता। और ऐसी जो आत्मा एकाग्रचित है, एकाग्रचित आत्मा उपराम है, और जब हमारी ये उपरामता है, जैसे जिसको कहता है कहते हैं लव में लीन रहना, खोए हुए रहना, बंधन मुक्त, कोई भी बातों का बंधन नहीं, और ऐसी आत्मा से वाइब्रेशन संसार में शुद्ध फैलते रहेंगे। जिसकी बुद्धि और मन अपने कंट्रोल में होगा, जिसको बाबा कहते हैं जहां मन को लगाना चाहे वहां लगाओ, जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगाओ, और जब हमारी साक्षी ऐसी अवस्था है, मन एकाग्र है, इसको कहते हैं कर्म योगी। फिर ऐसी आत्मा कभी ये नहीं कहेगी कि मुझे तो योग करने के लिए टाइम नहीं मिलता, हम बहुत बिजी है। और ऐसे जब हमारी अवस्था रहती है योग युक्त अवस्था, ऐसे के व्यवहार से हर्षित मुक्ता, नम्रता, अंतर्मुक्ता, सहनशीलता, ये सभी दैवी गुण नजर आएंगे। उपरामता, जिसके अंदर समेटने की शक्ति होगी, ये सभी दैवी गुण ऑटोमेटिकली दिखाई पड़ेंगे। तो इसीलिए हमारी ऐसी अवस्था में बनाना है, क्योंकि किस समय कुछ भी हो सकता है, और उसी समय हमें ऐसे योग युक्त रहने से जो हमारा सतयुग का जो लाइफ है, जिसको कहते जीवन मुक्त अवस्था, जो जीवन में रहते हुए भी हम स्वयं को मुक्त अनुभव करेंगे, फ्री अनुभव करेंगे। अगर हमारी सारा दिन ऐसी अवस्था है कर्मों में भी, और जब फिर शाम के समय जब हम योग में बैठते हैं, थोड़ा एकांत में बैठते हैं, उसी समय वो ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव हम कर पाएंगे। जितना चाहे उतना समय तक आप परमधाम में बाबा के साथ रूहवान कर सकेंगे, बाबा के उपकारों का गुणगान कर सकेंगे, अपने भाग्य का गुणगान कर सकेंगे, सोमानों में स्थित रह सकेंगे, या अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। बुद्धि में सारा दिन की कर्मों की कोई बातें याद नहीं आएंगी, तो इसीलिए हमें सारा दिन क्या करना है, योग युक्त रहने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए देखो बाबा का हर मुरली में क्या होता है, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अंदर से अभ्यास करना है। अंदर से बार बार क्या करना है, ये पुरुषार्थ करना है। जिसके जीवन में योग का सब्जेक्ट कच्चा है, फिर वो कई बातें, ये समस्या है, ये बातें है, जैसे बाबा ने इस कोई पार्टी के साथ मिलते समय इसी बारे के मुरली में बहुत अच्छी एक बात कही थी, जो बाप के दिल में है उसको ये समस्या, ये बातें खिलौना अनुभव होगी। अर्थात जिसकी बुद्धि बाप के साथ है, जिसका मन बाप के साथ है, उनको ये बातें छोटी छोटी लगेगी, खिलौना लगेगी। जो बाप से बहुत दूर है, अर्थात जिसकी मन और बुद्धि संसार में है, जो देहाभिमान में है, उसको ये छोटी छोटी बातें, समस्या पहाड़ की तरह लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि क्या करो, मेरे साथ लगा दो बस। इसलिए अगर हम पुरुषार्थ में अपने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, उस समस्या से बचना चाहते हैं, कोई विघ्नों से बचना चाहते हैं, जो जीवन में करना चाहते हैं, अगर वो करने के लिए हमें क्या करना है, योग के ऊपर ध्यान देना है। इसीलिए बाबा का बार बार कहते हैं ना, चेक करो कर्म करते समय आपका मन कहां है, आपकी बुद्धि कहां है। जिन्होंने योग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो अंत समय पश्चाताप करेंगे, अरे मैंने तो योग किया ही नहीं, मैंने ये बातों में बिजी रहे, लेकिन उसी समय पश्चाताप ही करेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए अभी हमें क्या करना है, योग का अभ्यास करना है। जब भी कोई व्यर्थ बातें आते हैं, धीरे से अपने मन को समझाओ, हे मन तुम इन बातों का चिंतन क्यों कर रहे, बाबा क्या कहता है इसके लिए। बुद्धि योग बाबा के साथ लगाना, अर्थात बाबा की शिक्षा को याद करना। टोटल कल्प में हम होलीएस्ट हाईएस्ट और रिचेस्ट बनने का साधन है, जितनी हमारी बुद्धि बाबा के साथ रहती है उतना ही हम होलीएस्ट भी बनते हैं, उतने प्रमाण में उतना ही हाईएस्ट बनते हैं, उतना ही रिचेस्ट बनते हैं। क्योंकि जिसकी बुद्धि जितना ज्यादा समय बाबा के साथ रहती है उतने ही हमारे अंदर शक्ति आते हैं। जिसकी बुद्धि बाबा के साथ रहती है उतना ही बाबा से उसको सुख मिलता है, और जितना बाबा से सुख मिलता है उतना देहाभिमान खत्म होगा, उतना चाहे स्वप्न में चाहे संकल्प में पवित्रता ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, और उतना ही हम हाईएस्ट ऊंचे से ऊंचे बन सकते हैं, या उतने ही हमारे अंदर दैवी गुण भी जितनी बुद्धि बाबा के साथ ज्यादा समय रहेगी उतने हमारे अंदर चाहे शांति का गुण, चाहे सहन शक्ति, चाहे नम्रता ऑटोमेटिकली आएगी। तो इसीलिए सभी मुरलियां हमारे धारणा में आए, वो प्रैक्टिकल हमारा आचरण हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, बार बार हमें बुद्धि बाबा में लगाने। इसीलिए बाबा कहते ना, मुख्य सार है ज्ञान का मनमना भव, बुद्धि बाबा में लगाना। अगर आज की मुरली हमने सुनी और आज के मुरली को स्लोगन को वरदान को अगर धारणा में लाना है, सारा दिन मन बाबा में लगा दो। जिसका मन बाबा में लग गया वो आज जो सुनी हुई मुरली वो पूरी धारणा में आ जाएगी। अगर मन बाबा में नहीं लगाया तो फिर मुरली धारणा में नहीं आएगी। इसलिए हमें क्या करना है, योग के ऊपर अटेंशन रख, बाबा की याद, अर्थात बाबा उस समय हमें क्या श्रीमत देते हैं। तो मन अब मन और बुद्धि जो व्यर्थ सोचते हैं उसका क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। इसीलिए पहले लिखते थे ना हर जगह पर, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद आए, जिसको बाबा याद आए उसको ड्रामा याद है, उसको अपना घर याद है, उसको वर्तमान का संगम युग याद है, उसको अपने वर्तमान का श्रेष्ठ जन्म याद है। एक बाबा याद आने से सब कुछ याद है, एक बाबा भूल गया सब कुछ भूल गया। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा बाबा को याद करना है। याद करना है मतलब कोई शिव शिव नहीं कहना है, लेकिन याद करना अर्थात उसको बुद्धि रूपी नेत्र के सामने देखना, उसके साथ हूं वो अनुभव करना। क्योंकि योग में दो चीजें काम आ जाते हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। अगर ये दोनों को आप यथार्थ लगाते हैं तब हमारा योग बाबा के साथ है, मन और बुद्धि। मन सोचने का काम करता है और बुद्धि दृश्य बनाने का काम करता है। अगर हमें यहां की बातें सुनाई पड़ रहे हैं, यहां की बातों का चिंतन चल रहा है, इसका मतलब मेरी बुद्धि यही है, मेरा योग बाबा से नहीं है। भले चाहे हम योग में बैठे लाल लाइट चल रहे हैं, लेकिन अगर हमें यहां की बातों का चिंतन चलता है वो हमारा योग नहीं है, इससे हम चार्ज नहीं होंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, बुद्धि बाबा के साथ लगाना। और इसमें से भी मन और बुद्धि दोनों से भी महत्व की चीजें कौन से हैं, बुद्धि। पहले हमें बुद्धि को बाबा के साथ लगाना है। तो सबसे पहले अगर हमें योग का महत्व तो पता है, योग का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन हमारा योग सदा बाबा के साथ लगा रहे, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बुद्धि को बाबा के साथ लगाना है। तो बुद्धि क्या चीज है, बुद्धि जिसको कहते हैं ध्यान, हमारा आंतरिक ध्यान बाबा के साथ लगा रहे हैं। ध्यान अर्थात हमारा कॉन्शियस, एक कॉन्शियस सदा बाबा को देखता रहे, जिसको कहते स्मृति स्वरूप बनना, हमारी स्मृतियां जागृत रहे। जब हमारी स्मृति जागृत है और जितनी स्मृति पावरफुल है उतना योग पावरफुल। स्मृति कमजोर है, ढीली है, योग भी उतना ही ढीला। अगर थोड़ी भी समय में आपकी स्मृति बड़ी पावरफुल है उतना ही आपका वो ज्वाला स्वरूप योग बन सकता है। थोड़ा समय भी अगर हम योग में स्मृति स्वरूप होकर के बैठते हैं, उससे जो हम चार्ज हो जाते हैं, तो सारा दिन न चाहते हुए भी हमारी वो अनुभव बार बार अपने तरफ खींचेगा, बार बार बुद्धि न चाहते हुए भी परम धाम की तरफ जाएगी। है उसी समय हम इन आंखों के द्वारा जो देखते हैं या जो कुछ सुनते हैं उन बातों का चिंतन नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने स्मृति को क्या करना है, पावरफुल रखना है। इसीलिए बाबा कभी कहते ना, आप बाबा को साथ अनुभव करो, अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा देखो बाबा मेरे साथ में है। कर्म योग करते समय साकार में बाबा को देखने की कोशिश करना है, और जब बैठ करके योग करते हैं उसी समय भी हम परमधाम में हैं और बाबा को सामने देख रहे बुद्धि के द्वारा। ये बुद्धि रूपी नेत्र परम धाम में बाबा को देखता रहे, ये है आपका योग। जैसे बुद्धि कैसी काम करती है, बुद्धि कैसा दृश्य देखते हैं, वास्तव में आंखें नहीं देखती, देखने वाली कौन है, बुद्धि आंखों के द्वारा देखती है। अगर आपकी बुद्धि कहीं और है तो आपकी आंखें खुली होने के बावजूद भी देख नहीं पाएंगे। जैसे अभी आपको कहा कि इसी समय ओम शांति भवन को बहुत अच्छी लाइटिंग की है और आप ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं और वहां से आप बीच वाले दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। अंदर चढ़ करके गए तो वहां बहुत अच्छे कांच का बना हुआ सूर्य का एक कृष्ण का सत्यु का मॉडल बना है, कृष्ण राधा वगैरह। उसके बाद आप ओम शांति भवन में पहुंच जाते हैं। ओम शांति भवन में बीच में एक बाबा का सुंदर फोटो है, साइड पर सर्व आत्माओं का पिता का एक चित्र है जिसमें बीच में ब्रह्मा बाबा और चारों ओर और धर्म आत्मा दिखाए। उसके बाद आप उसके दूसरे साइड पर देख रहे हैं कृष्ण सत्यु का जो रासलीला वाला चित्र है और एक दरबार सजा हुआ है वो चित्र है। उसके बाद आप वहां से ओम शांति भवन से बाहर आए, शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ व्हाइट मार्बल से बना हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ और ऊपर बाबा का क्वास्केट लगा हुआ है। नीचे लिखा है आबू तीर्थों में महान तीर्थ, इसकी महिमा सारे संसार में सुना। और उस शांति स्तंभ को आप चक्कर लगा करके बाबा के झोपड़ी के पास गए। झोपड़ी में सामने वो झूला है, झोपड़ी के अंदर जाने के बाद वहां आपने देखा बाबा लेटर लिख रहे हैं, वो फोटो है, गद्दी रखी है, तकिया रखा हुआ है, बाबा की झोपड़ी सामने आई। उसके बाद आप बाबा के कमरे में गए जहां नीला सा ट्रांसलेट लगा हुआ है। वहां से आप पीस पार्क में जाते हैं। पीस पार्क में जो ओम बना हुआ है सीमेंट का, वहां से आप नीचे जो फूल है बगीचा है उसको तरफ देख रहे हैं। वहां से आप ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर में एक डोम बना हुआ है जिसमें बाबा का एक बहुत अच्छा अव्यक्त चित्र है, उसको आप देख रहे हैं। तो देखो अभी आपको दिखाई पड़ रहा था, दिखाई पड़ा तो कौन देखा? आपकी आंखें तो अभी मुझे देख रहे, लेकिन वहां भी आपको जैसे आपको कहा वैसे वैसे वो दृश्य देख रहे थे। कौन देख रहा था? बुद्धि। तो इस तरह से हमें योग में भी भले शरीर यहां बैठा है, आंखें यहां है, लेकिन बुद्धि से हमें उस परमधाम की बातों को देखना, वहां जाकर के बाबा से बातें करना, रोरवान करना, इसको कहते हैं योग। लेकिन हम बैठे यहां, लेकिन हम रोरवान कहीं बगीचे में तपस्याधाम में किसी से बात कर रहे हैं या फिर दुकान में क्या खरीद करना है उसकी बात कर रहे हैं या फिर अभी जाकर के खाना खाना है फिर पैकिंग करके ट्रेन पकड़ना है वो चिंतन चल रहे हैं, उसको योग नहीं कहेंगे। तो धीरे से जब आपकी बुद्धि कहीं जाती है, धीरे से बुद्धि को समझाओ, हे बुद्धि हम योग में बैठे हैं और तुम इधर क्यों गए? ये आधा घंटे के लिए आप प्लीज बाबा के तरफ परमधाम में जाओ, फिर वो बातें करो, फिर धीरे धीरे आपकी बुद्धि चली जाएगी। फिर बुद्धि को समझाओ, बुद्धि हम योग में बैठे हैं, तुम कहां जा रहे हो? फिर बुद्धि चली जाएगी। इस तरह से ये युद्ध है, बुद्धि जाएगी, आपको धीरे से क्या करना है, बुद्धि को कन्वर्ट करना है, उसको समझाना है बुद्धि इस समय महत्व क्या है, उस समय वहां तुम क्यों जाते हो। और जब हमारी बुद्धि समझेगी और महत्व भी समझाना है बुद्धि का, देखो बुद्धि तुम जब बाबा के पास जाती हो तो मुझे बड़ा सुख फील हो जाता है, मेरी कमाई हो जाती है, मुझे पावर मिलती है। और बाबा कोई सत्ययुग में आकर के कहेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ? क्या त्रेतायुग में कहेगा? क्या द्वापर युग में कहेगा? तो इसीलिए तुम बार बार क्यों जाते हो? इस तरह से जिसे हम अपने आप से साक्षी होकर के बात कर रहे, और जब बुद्धि आपकी समझ जाएगी कि सचमुच ये मैं गलत कर रही हूं, मैं अपने राजा को धोखा दे रही हूं, मुझे नहीं जाना चाहिए, तब जाकर के बुद्धि बाबा के सिवाय कहीं और नहीं जाएंगी। और जब आप आपकी बुद्धि और साथ में मन ये दोनों जब बाबा के साथ चिपके हुए रहते हैं, तब हमारी बैटरी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, जिसको आज बाबा ने कहा ना, एक संगम युग में आपकी बैटरी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और जब बैठ करके योग में आपकी बैटरी चार्ज हो जाते हैं, तो सारा दिन आपकी फिर कर्म में भी वो बुद्धि बार बार बाबा के तरह जाने की कोशिश करेगी, बुद्धि उपराम हो जाएगी, कोई कुछ भी बोलता है उसके तरफ बुद्धि ज्यादा ध्यान नहीं देगी, बुद्धि जाएगी नहीं, क्योंकि बुद्धि ने वो अनुभव किया है उसमें कितना बड़ा सुख है। उस समय फिर जब बुद्धि जाती है तो मन भी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा उसको, क्योंकि जहां बुद्धि जाते हैं मन उसके पीछे पीछे जाएगा। हम क्या करते हैं, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मन को कंट्रोल करने की कोई कोशिश कोई जरूरत नहीं है। मन वहीं जाता है जहां बुद्धि जाते हैं, इसलिए कहा होता है ना, कहते भी जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। तो इसीलिए हम अपने ध्यान को बाबा में लगाना है, जब ध्यान बाबा में लगता है तो मन भी क्या हो जाएगा, बाबा में लग जाए। बुद्धि एक कैमरे का काम करती है और मन टीवी का काम करता है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र है, चाहे व्यक्ति है या कोई भी दृश्य है, वही चित्र टीवी में आता है। इसी तरह आपके बुद्धि के सामने कौन सा विजन है, कौन सा दृश्य है, उसी के सोच मन में चलते हैं, ये सिस्टम है। आपकी आंखें क्या देख रहे वो महत्व का नहीं है, लेकिन आपकी बुद्धि क्या चीज को देख रहे हैं वो महत्व का है। और जब सारा दिन आपकी बुद्धि बाबा को देखेगी तो मन किसका गुण गाएगा, मन भी बाबा का गुण गाएगा। तो जब बुद्धि बाबा को देखेगी, मन बाबा का गुण गाएगा, तो कोई दुश्मन हो, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उसका चिंतन नहीं चलेगा, रिश्तेदारी नातेदारी कोई भी उसके तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, फिर उनके प्रति हमारा व्यवहार भी जिसको कहते न्यारा और प्यारा। तो इसीलिए हमें कोशिश करके हमें सारा दिन अपनी बुद्धि के सामने क्या करना है, दृश्य कौन सा रखना है, परम धाम का या बाबा का, तब हमारे संकल्प भी क्या होते हैं, कम चलते हैं। और जब बाबा के संग में बुद्धि और मन है, कहते ना जैसा संग वैसा रंग, तो बाबा का रंगत बाबा के जो गुण है हमारे में उतरना शुरू करते हैं। जब बाबा की याद है, किसी ने कुछ बोला, उस समय आप उसके लिए भी दुआएं देंगे, उसको भी आप क्या करेंगे, सहन करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना रखेंगे। इसलिए कहते ना याद, याद मतलब क्या, याद का अपोजिट करो तो क्या होता है, दया। जो दया करता है वही याद कर सकता है। तो इसलिए सारा दिन अपने बुद्धि को क्या करना है, बुद्धि से बातें करनी है, बुद्धि के साथ दोस्ती करो। और जिसकी बुद्धि के साथ दोस्ती है उसके लिए फिर कर्मेंद्रिय पर जीत पाना भी इजी है, क्योंकि हमारे शरीर में ये आत्मा का मुख्य पार्ट है बुद्धि। अगर राजा को अच्छा बनना है तो राजा को अपने मंत्री से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसका मंत्री अच्छा हो। वो तो राजा तो बहुत कमाता है, बहुत कुछ इनकम है, लेकिन अगर उसका मंत्री भ्रष्टाचारी है तो राजा जो भी कमाएगा सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंत्री क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी तरह हम बहुत ज्ञान सुन रहे हैं, बहुत बातें सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि क्या कर रहे हैं, वो सब इधर उधर जाकर के खत्म कर रहे हैं। क्योंकि बुद्धि गई तो मन भी गया, और उसके कारण हम खाली की खाली महसूस करते हैं। इतना ज्ञान सुन करके, इतना योग लगा करके स्वयं को खाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लीकेज हो रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, बुद्धि के ऊपर ध्यान रखना। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाते बछड़ा क्या करता है, उसके पीछे पीछे जाते। अगर गाय यही है और बछड़े को मार पिटाई करके बाहर भेजो जाएगा, जहां गाय है बार बार वहीं आएगा। इसी तरह बुद्धि यहां है और मन को कह रहे कि जाओ तुम परमधाम में जाओ, जाएगा मन नहीं जाएगा। इसीलिए पहले बुद्धि को भेजो तो मन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जाएगा। इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है, बुद्धि को, इसको कहते जागृत। इसीलिए बाबा कहते ना बच्चे संगम युगाई जागृत करने का, जागरण करने का टाइम। जागना मतलब कोई रात भर जागना ये नहीं, जागना अर्थात अलर्ट रहना, अवेयरनेस रहना, सतर्क रहना, बुद्धि नेत्र को खोल करके रखना। अगर आप योग में बैठे हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र परमधाम को नहीं देख रहे हैं, तो समझो आप हम सोए हैं, हमारा नेत्र बंद है। इसीलिए संगम युग में हमारा बुद्धि का नेत्र सदा खुला रहे, अर्थात बुद्धि बाबा के साथ लगे रहे, बुद्धि बाबा को देखती रहे, बुद्धि के सामने परमधाम का दृश्य रहे, बुद्धि के सामने संगम युग है ये याद रहे, बुद्धि के सामने हम सत्ययुग में जा रहे ये याद रहे। और जब हमारी बुद्धि अलर्ट है तो ऑटोमेटिकली हमारे विचार भी अच्छे चलेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन नजर आएगा, तब हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। सारा दिन आपकी सोल कॉन्शियस आत्मा की ज्योति जागृत रहेगी, और जिसकी आत्मा की ज्योति शरीर में जागृत रहती है उसको सारा दिन, जिसको अपनी आत्मा नजर आती है, नजर मतलब कोई स्थूल नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपको इस शरीर में भ्रुकुट में आत्मा मेरी चमक रहे, मैं एक ज्योति स्वरूप हूं, ये महसूस होगा, अनुभव होगा, और उससे सारा दिन आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। आपके आंखों में चंचलता नहीं होगी, इंद्रियों में चंचलता नहीं होगी, निर्भय होंगे आप, कोई भी प्रकार का भय डर नहीं रहेगा, और आत्मा की ज्योति जागृत रहने से आत्मा से जो वेव्स निकलेंगे उसे शरीर में एक अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। पर ऐसे को ये खाऊं वो खाऊं या व्यर्त बोलो, इन बातों में चिंतन नहीं चलेगा। वो ऐसी आत्मा तृप्त बन जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, बार बार अपने बुद्धि को अलर्ट रखना है, जागृत रखना है। और जब हमारी ये स्थिति है तो हमें सभी आत्माएं नजर आएगी, चाहे कोई बुजुर्ग हो चाहे कोई कैसे भी हो, सभी आत्माएं मेरे भाई है, ये अनुभव होगा। कई सोचते ना दूसरे की मुझे आत्मा ही नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि स्वयं की आत्मा बुझी भी है, ज्योति जागृत नहीं है। और क्यों जागृत नहीं है? क्योंकि बुद्धि बाबा के साथ बार बार नहीं लगती, और जिसके कारण सारा दिन ज्योति बुझी है। तो इसलिए हमारी ज्योति सदा जागृत रखने के लिए क्या करना है, बुद्धि बाबा के साथ लगे। जब बुद्धि बाबा के साथ है, बुद्धि है पॉजिटिव तार और मन है निगेटिव तार, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव तारे जब प्लग में डालते हैं तो क्या होता है, बल्ब शुरू हो जाता है। इसी तरह मन और बुद्धि जब बाबा के साथ आए तो हमारा आत्मारूपी बल्ब जगता रहेगा। बुद्धि पॉजिटिव, मन है निगेटिव। केवल पॉजिटिव की तार एक तार डालने से भी काम नहीं चलता है, लेकिन निगेटिव तार भी जरूरी है। पॉजिटिव में करंट होता है, निगेटिव में नहीं होता। तो इसीलिए दोनों भी तारे अवश्य। तो ऐसा हमारा संगम में जितना समय हमारी मन और बुद्धि बाबा के साथ लगी रहेगी, उतना हम गुण और शक्तियों से भरपूर बनेंगे, उतना हम, जिसको बाबा ने इसी मुरली में रिचेस्ट कहा। और ऐसी जो गुण और शक्तियां जितने कमाई, उसको कोई चोर भी लूटेगा? कोई ना चोर लूट सकता है, ना पानी डुबो सकता है, ना आग जला सकती है। और यही हमारी कमाई कहां आएगी, सत्युग में काम आएगी। जैसे कोई देश छोड़ करके कहीं जाता है तो अपनी संपत्ति साथ में लेके नहीं जाता, लेकिन क्या करता है, संपत्ति को बेच करके उसको क्या करता है, मनी लेता है, पैसे, और उसी पैसे से वहां जाकर के क्या करता है, नया मकान खरीद करेगा, फिर संपत्ति लेगा। इसी तरह हमें भी ये दुनिया छोड़ करके सत्युग में जाना है, तो हमें कौन सी मनी काम आएंगी, वैल्यूज, गुण, गुण शक्तियां दुआएं, ये आपकी मनी है। और इसी के आधार से आप जो चाहे सत्युग में सोने के महल, जितने जिसके पास गुण अधिक, जितना शक्ति अधिक, उतना उसकी संपत्ति भी सत्युग में ज्यादा होगी, अर्थात वो राजा क्वालिटी के बन सकते हैं। लेकिन गुण और शक्तियां किसके पास होगी, जितना जिसका बुद्धि का योग बाबा के साथ ज्यादा लगा रहता है, मन और बुद्धि, उतना उसके अंदर गुण और शक्तियां ज्यादा, उतना वो रिचेस्ट बन सकता है। तो रिचेस्ट, हाईएस्ट, होलिएस्ट बनने का आधार क्या रहा, योग। और इससे ही हम सभी जो भी आज तक सीजन में जो मुरलियां सुनी है, चाहे बाबा ने कहा कि बच्चे सोमानों में रहो, चाहे समस्या का समाधान करो, बंधन मुक्त बनो, अभिमान को खत्म करो, जो भी बाबा ने सीजन में मुरलियां सुनाई, अगर उन्हीं मुरलियों को आप प्रैक्टिकल में लाना चाहते हैं, उसका आधार क्या है, योग। तो इसीलिए हमें क्या करना है, योग के लिए टाइम निकालना है। उसके लिए एक तो बैठ करके योग, जो जो बैठ करके लिए बाबा ने समय दिए हैं, कौन सा समय दिया है, एक को अमृत वाला योग, क्लास से पहले योग, रात को सोने से पहले थोड़ा सा समय निकाल करके हमें क्या करना है, बैठ करके योग लगाना है। क्योंकि बैठ करके योग लगाने से क्या होता है, बैठ करके योग लगाने से वो ज्वाला स्वरूप स्थिति शक्तिशाली स्थिति बना सकते हैं। और जब बैठ करके योग है तो फिर सारा दिन हमारा कर्म में भी योग लगा रहेगा। इसलिए अगर ब्राह्मण जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, गुण और शक्ति से संपन्न बनना चाहते हैं, जीवन को महान बनाना चाहते हैं, तो जीवन में योग के सब्जेक्ट को क्या करना है, महत्व देना है। योग से आप जैसे बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, कैसे भी कड़े संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और इससे ही जिन्होंने योग का अनुभव किया उसको अपने जीवन धन्य अनुभव होगा। वो कभी दूसरों को देखने में, दूसरे का चिंतन करने में, व्यर्थ बातों का चिंतन करने में अपना समय व्यर्थ नहीं कमाएंगे। इसलिए मैं क्या करना है, संगम युग में अलर्ट रहना है। हर घंटे के बाद चेक करो कि इसी समय में कितना समय योग में था। जितना योग में रहेंगे, बाबा बाबा कहेंगे, बिंदी लगाएंगे, उतना आपका जमा का खाता बढ़ता जाएगा। जितना बाबा को सारा दिन देखते रहेंगे बुद्धि के द्वारा और मन के द्वारा गुणगान गाते रहेंगे उतना महान बन सकते हैं। तो यह संगम युग का हमारा एक ही ऐसा थोड़ा सा समय है जिसमें हम अपनी आत्मा को चार्ज कर सकते हैं। और जितने जिसका आत्मा को चार्ज किया उतना वो शक्तिशाली बन सकता है। तो शक्तिशाली राजा बनने के लिए, मास्टर सर्वशक्तिमान बनने के लिए, उस सर्वशक्तिमान के साथ मन और बुद्धि से सदा चिपके रहो। और मन बुद्धि वहां जाने के लिए जो बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, इतना सारा खजाना दिए हैं, इन बातों के क्या करना है, स्मृति स्वरूप बनना है। इसलिए योग का हमें क्या करना है, जीवन में महत्व रखना है और अलर्ट रहना है। ठीक है, ओम शांति।